शुक्रवार 9 नवंबर, स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। रूस में जारी अफगानिस्तान शांति वार्ता में भारत हो रहा शामिल, तालिबान भी है बैठक का हिस्सा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा,
हमें लगता है कि कोई प्रोसेस इज कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी व्हिच वी हैव ऑन अफगानिस्तान, अफगान लीड, अफगान रूल एंड अफगान कंट्रोल।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव प्रचार के लिए एक ही दिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और सुनेंगे विवेचना रेहान फजल से इस बार बात पहले विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की।
गैस मास्क हमारे पास नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि एक कपड़े में यूरिन डालकर अगर आपने नोज के पास रखें तो उससे आप बच जाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं बचे।
खबरें खेल जगत से भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुआ सिनी से। अफगानिस्तान में शांति और इलाके के भविष्य को लेकर रूस में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार अफगानिस्तान और तालिबान शामिल हो रहे हैं। मॉस्को में हो रही इस बातचीत में चरमपंथी संगठन तालिबान के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान और चीन सहित करीब दर्जन भर देशों के नुमाइंदों से बातचीत की। अफगानिस्तान सरकार आधिकारिक तौर पर इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अफगान शांति परिषद के सदस्य इस बैठक में शामिल हैं। एक वक्तव्य में अफगानिस्तान सरकार ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन के कारण काबुल और तालिबान के बीच सीधी बातचीत संभव हो पाएगी। अमेरिका तालिबान से सीधी बातचीत की तलाश में है और उसने इस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि भेजा है। भारत भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा है कि हाल में रिटायर हुए सेना के एक कर्नल पर शक है कि वो दशकों से रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। इस मामले में रूसी दूतावास के प्रमुख को तलब किया गया है। ऑस्ट्रिया के मुताबिक एक अन्य यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी से मिली जानकारी की मदद से ये बात सामने आई। वियना में इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा कि अगर ये बात सच पाई गई तो इससे यूरोप और रूस के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है।
Dieses Vorgehen könnte nach unseren Informationen in den 90er Jahren begonnen haben und hat bis ins Jahr 2018 angedauert.
सेबेस्टियन कुर्ज कह रहे थे कि हमें पता चला है कि ये गतिविधियां 1990 के दशक से शुरू हुई और साल 2018 तक जारी रही होंगी। अगर ये बात पुष्ट हुई तो चाहे ऐसा नीदरलैंड्स में हुआ हो या ऑस्ट्रिया में, इससे यूरोपियन यूनियन के और रूस के संबंध नहीं सुधरेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 80 साल पहले नाजी जर्मनी के क्रिस्टल नाख्त में यहूदियों की हत्या के बाद समुदाय के खिलाफ अत्याचार में तेजी आई थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के मुताबिक 80 साल पहले यहाँ यहूदियों के खिलाफ बर्बरता के बावजूद जर्मनी में यहूदी विरोध की भावना व्यापक है। बर्लिन में यहूदियों के एक पूजा घर में अपने भाषण में एंगेला मर्केल ने पूर्वी शहर शेमनित्ज में यहूदियों के पूजा घर पर दक्षिण पंथियों के एक और हमले का जिक्र किया।
Wir gedenken mit dem Wissen, dass Grenzüberschreitungen und Verbrechen zuzuschauen in letzter Konsequenz.
एंगेला मर्केल कह रही थी, हमें याद है कि अपराध के वक्त अगर हम सीमा पार कर लें या किनारे खड़े रहे, इसका मतलब है कि हम उस अपराध में हिस्सा ले रहे हैं। हमें याद है कि बहुमत वाले लोकतंत्र में चौकन्ना होने की जरूरत है। कानूनी हदें जरूरी हैं। अगर लोगों के विश्वास उनकी चमड़ी के रंग के कारण उन पर हमला हो रहा है तो सरकार को उदारता नहीं दिखानी चाहिए। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस का कहना है कि वो मेलबर्न में चाकू से हुए हमले को एक आतंकी घटना की तरह देख रही है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस ने हमलावर पर गोली चलाई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया की सरकारी सेना ने इदलिब प्रांत के निकट एक हमले में 20 से ज़्यादा विद्रोहियों को मार दिया है। जिस इलाके में ये घटना हुई वह एक बफर जोन माना जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी सीरिया में पिछले एक साल में हुई सबसे ज़बरदस्त लड़ाई में विद्रोहियों के कई ठिकानों को कब्जे में लिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी की दूसरी सभा दिन भर में एक बार फिर से सुनने वालों का स्वागत है। پروگرام کی شروعات افغانستان شانتی وارتا سے جو اس وقت روس کے ماسکو میں جاری ہے، غالباً کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے شروع ہوئی ہوگی۔ بارہ دیشوں کی معاف کیجیے گا سہمتی سے ہو رہی ہے بیٹھک، چار بار پہلے ہو چکی اسی طرح کی بیٹھکوں۔ رات سے شروع ہوئی وارتا اس معنی میں الگ ہے کہ اس میں افغانستان طالبان حصہ لے رہا ہے پہلی بار، اور بھارت بھی اس میں شامل ہے۔ حالانکہ بھارتیہ ودیش منترالے کے پروکتا کا کہنا ہے کہ ماسکو بیٹھک میں بھارت انوپچارک طور پر شامل ہو رہا ہے۔ شروتاؤں کو یاد دلانا چاہیں گے کہ طالبان سال 2001 تک افغانستان کی سرکار میں موجود تھے اور امریکہ کے حملے کے بعد ستا سے بے دخل کیے گئے تھے۔ بھارت کی واجپئی سرکار کے سمے جو ویمان اپہرن ہوا تھا اس میں بھی طالبان کا ہی ہاتھ تھا۔ ادھر ماسکو میں آج کی بیٹھک کی شروعات میں بھاشن دیتے ہوئے روس کے ودیش منتری سرگئی لاوروف نے کہا،
روسیہ وستوپایت за сохранение единого и незелимого Афганистана, в котором мирно и счастливо۔
روس کا یہ قدم ایک ایسے افغانستان کو لے کر ہے جو اویبھاجت رہے اور جس میں سبھی قبیلیں شانتی اور سکھ کے ساتھ رہ سکیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شانتی وارتا میں شامل ہونے والے سبھی لوگ افغانستان کے بارے میں اسی طرح کے وچار رکھتے ہیں۔ کسی کو بھی اس دشا میں نہیں سوچنا چاہیے جس میں افغانستان الگ الگ دیشوں کے ہتوں کی پورتی کے لیے بھو راجنیتک لڑائی کا اڈا بن جائے۔ یہ تھے روس کے ودیش منتری کے شبد۔ ماسکو میں ہو رہی اس بیٹھک میں بھارت کے علاوہ پاکستان، چین، امریکہ اور ایشیا کے کچھ دوسرے ملک شامل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے وہاں کی ایک شانتی سمیتی اس میں موجود ہے۔ بھارت سے دو دو پورو راجدوت اس میں حصہ لے رہے ہیں، امر سنہا جو بھارت کے افغانستان میں راجدوت تھے اور ٹی سی اے راگھون جو پاکستان میں اچھایوکت رہ چکے ہیں۔ مگر بھارتیہ ودیش منترالے کے پروکتا رویش کمار نے آج شام ایک پریس وارتا میں کہا،
ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پروسیس از کنسسٹنٹ ود دا پالیسی وچ وی ہیو آن افغانستان وچ آئی جسٹ مینشن، افغان لیڈ، افغان روڈ اینڈ افغان کنٹرول۔ آئی تھنک وی ول پارٹیسپیٹ ان دا پروسیس، دیٹ از وائی اینڈ وی میڈ اٹ ویری کلیئر دیٹ آر پارٹیسپیشن ایٹ دیٹ میٹنگ ول بی ایٹ دا نان آفیشیل لیول۔
نان آفیشیل پہ بڑا زور ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہندو اخبار میں راجنیک معاملوں کی سمپادک سہاسنی حیدر سے اور پوچھا کہ بھارت بیٹھک میں شامل ہونے کی بات کو بار بار انوپچارک یا نن آفیشیل کیوں بتا رہا ہے؟
دیکھیے، ایک تو یہ جو انوپچارک لفظ ہے یہ شاید غلط ہوگا۔ جو بھارت کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھارت کی جو پارٹیسپیشن ہے ماسکو فارمیٹ میں وہ نان آفیشیل ہے، مطلب جو لوگ بھارت کی طرف سے جائیں گے وہ آفیشلز نہیں ہیں، لیکن جو بھی بھارت کی طرف سے جاتا ہے ایک طرف سے وہ بھارت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رشین گورنمنٹ نے جو نیوتا بھیجے تھے اس میں رشین گورنمنٹ کی طرف سے انڈین گورنمنٹ کو یہ نیوتا گیا ہے۔
لیکن ایک سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ جب بھارت کے ودیش منترالے کے پروکتا خود کہہ رہے ہیں کہ دو بار پہلے بھارت اس میں حصہ لے چکا ہے، تو اس بار یہ نان آفیشیل کا یہ کی کیٹیگری یا بار بار اس پہ ایمفیسس کیوں؟
ماسکو فارمیٹ میں ایک بار پہلے یہ جا چکے ہیں اور جب بھارت کی طرف سے جوائنٹ سیکرٹری گئے تھے، لیکن اس وقت جو تھا جب جوائنٹ سیکرٹری گئے تھے طالبان کی طرف سے کوئی ڈیلیگیشن وہاں پر موجود نہیں تھا۔
یہ بتائیے کہ آپ کا بیسیکلی یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس پر طالبان شامل ہو رہے ہیں اس لیے اس کا ایک طرح سے اس کی پوری روپ ریکھا بدل گئی ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے نان آفیشیل کہنے کی۔ ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ افغانستان حکومت سے بات کیا تھا بھارت نے کچھ دنوں پہلے اسی معاملے کو لے کر، کچھ اندازہ کی کیا باتیں ہوئی ہوں گی؟
بلکہ یہ پرشن ہم نے ضرور کیا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے کہ اس میٹنگ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کا کوئی نمائندہ اسی میز پہ ہے، اسی ٹیبل پہ ہے جہاں پہ طالبان کا کوئی ڈیلیگیشن بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ جب ہم نے پتا کی ہے تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے سوتروں نے کہا ہے کہ یہ افغانستان میں غنی گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشنز کے بعد ہی یہ نرنے لیا گیا تھا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے۔
آخری سوال سہاسنی حیدر، یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ذہن میں ہو ان کو کہ اس کا کہیں نہ کہیں دیش پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے، طالبان جہاں موجود ہو وہاں بھارت کا موجود ہونا ایک طرح سے؟
بھارت کے جو ریسپانس سے بھی ظاہر ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو نرنے لیا ہے ایک کافی بڑا نرنے ہے، کیونکہ اتنے سالوں میں بھارت نے کبھی طالبان کے کسی نمائندے کو کسی طرح کا اوپچارک شرے نہیں دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آئی سی 814 کے ہائی جیکنگ کے دوران 1999 میں مجبوری میں بھارت کو طالبان کے ساتھ تھوڑی سی نیگوشیشن کرنی پڑی، لیکن اس کے علاوہ طالبان کی گورنمنٹ کو نہ بھارت نے ریکگنائز کیا تھا نہ اس کی کسی نمائندے کو آفیشیلی کبھی اس کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے۔
یہ تھیں سہاسنی حیدر۔ یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اس کا ایم یہ ہے، اس کا دھیے یہ ہے کہ افغانستان اور طالبان کے بیچ ایک سیدھی بات شروع ہو جائے، لیکن ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ ماسکو میں طالبان ڈیلیگیشن کے جو ایک پرتنیدھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کابل سے ابھی بات چیت کرنے کے لیے سیدھی طور پر تیار نہیں ہے۔
بی بی سی انڈیا بول۔
احمد آباد شہر کا نام بدل کر کرناوتی کرنے کی تیاری میں ہے گجرات سرکار۔ اس سے پہلے اتر پردیش سرکار نے الہ آباد کا نام پریاگ اور فیض آباد کا نام بدل کر ایودھیا کر دیا ہے۔ شہروں اور جگہوں کا نام بدلنے والے سرکاروں کے ان فیصلوں پر کیا ہے آپ کی رائے؟ اس بار بی بی سی انڈیا بول میں یہی ہوگا چرچا کا وشے۔ کارکرم میں حصہ لینے کے لیے 10 نومبر شنیوار کو شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
تو کل انڈیا بول میں ضرور شامل ہوں اور بات کرتے ہیں چھتیس گڑھ کے۔ چھتیس گڑھ کے بستر میں چناوی ریلیوں کو سمبودھت کرنے کے لیے پردھان منتری نریندر مودی اور راہل گاندھی ایک ہی دن پہنچے۔ مودی جہاں شام وہاں سے واپس ہو گئے، راہل گاندھی کل تک وہاں رکیں گے۔ وہاں ہوئی بیٹھکوں میں جہاں کانگریس ادھیکش نے نوٹ بندی پر پردھان منتری کو گھیرنے کی کوشش کی، وہیں مودی نے بات کی پریوارواد اور اربن نکسلیوں کی۔ سنیں آلوک پوتل کی ایک رپورٹ۔
چناؤ کے پہلے چرن میں ودھان سبھا کی 90 میں سے ان 18 سیٹوں پر سوموار کو متدان ہونے ہیں جو ماؤواد پربھاوت ہیں۔ یہی کارن ہے کہ بستر پہنچے پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے بھاشن میں وکاس یوجناؤں اور پرانی سرکاروں کی آلوچنا کے بعد سب سے ادھک ماؤواد پر نشانہ سادھا۔
جو اربن ماؤوادی ہے وہ شہروں میں ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں، صاف ستھرے دکھتے ہیں، اپنا ایک رتبہ بناتے ہیں، ان کے بچے ودیشوں میں پڑھتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے ریموٹ سسٹم سے ہمارے ان آدیواسی بچوں کی زندگی تباہ کرنے کا یہ کام کرتے ہیں۔
پردھان منتری نریندر مودی نے شہری ماؤوادیوں کے بہانے کانگریس پر بھی نشانہ سادھا۔
ان اربن ماؤوادیوں کی رکشا کے لیے بیان بازی کرتے ہو، ان کے خلاف اگر سرکار قانونی کارروائی کرے تو آپ ان کو بچانے کے لیے میدان میں آتے ہو، اور یہاں آ کر کے نکسل واد کے خلاف ڈھول مول باتیں کر کے ووٹ تراشتے ہو۔
پردھان منتری نریندر مودی جس سمے بستر کی اپنی سبھا میں یہ دعویٰ کر رہے تھے، لگ بھگ اسی سمے راجنانگاؤں علاقے میں کانگریس پارٹی کے ادھیکش راہل گاندھی پردھان منتری پر آروپوں کی بوچھار کر رہے تھے۔
اچھا پہلے کہتے تھے بھرشٹاچار کے خلاف ہوں، بھرشٹاچار کے خلاف ہوں، جہاں بھی جاتے تھے بھرشٹاچار کے خلاف ہوں، اب بھرشٹاچار شبد ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ پتا ہے کیوں؟ اب پورے دیش کو معلوم ہے کہ چوکیدار نے 30,000 کروڑ روپے کی چوری کرا دی۔
راہل گاندھی نے اپنے بھاشن میں پردھان منتری نریندر مودی کے وعدوں کا بھی ذکر کیا۔
پہلی بار میں نے دیکھا دیش کا پردھان منتری کہتا ہے 2 کروڑ یوواؤں کو روزگار دوں گا، کسانوں کو صحیح دام دوں گا، 15 لاکھ روپے دوں گا، کسانوں کا قرضہ معاف کروں گا۔ چناؤ ختم ہوتا ہے پھر کہتا ہے بھائی اور بہنوں جھاڑو اٹھاؤ صفائی کرو۔
راجنانگاؤں مکھیہ منتری رمن سنگھ اور ان کے سانسد بیٹے ابھیشیک سنگھ کا گرہ ضلع ہے۔ یہی کارن ہے کہ پاناما پیپرز میں سانسد ابھیشیک سنگھ کے نام کو لے کر بھی راہل گاندھی نے سرکار سے سوال پوچھے۔ آلوک پتل، بی بی سی، چھتیس گڑھ۔
11 نومبر کو پرتھم وشو یدھ سماپت ہونے کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس مہا یدھ میں 10 لاکھ سے بھی ادھک بھارتیہ سینکوں نے وبھن مورچوں پر برٹن کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ ان میں سے قریب 74,000 سینکوں نے اپنے پراڑوں کی آہوتی دی اور 67,000 گھائل ہوئے۔ آج کی ویوچنا میں ریحان فضل یاد کر رہے ہیں پہلے وشو یدھ میں بھارتیہ سینکوں کے یوگدان اور اس کے دورگامی پریناموں کو۔
چھتری مانس کا چھترا پڑ جا ویسے بس اس کے ساتھ، دور بدیسی رن بھومی میں ایب دکھاؤ اپنے ہاتھ۔
1914 کے شروع میں پنجاب اور ہریانہ کے گاؤں گاؤں میں یہ آلہ سنا کر عام لوگوں کو انگریزی سینا میں شامل ہونے کے لیے پروتساہت کیا جاتا تھا۔ یہ لڑائی بھارت میں نہیں ہو رہی تھی، لیکن پنجاب اور ہریانہ کا معمولی کسان صرف 15 روپے مہینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر برٹن کے لیے فرانس، گریس، اتری افریقہ، فلسطین اور میسوپوٹیمیا کے مورچے پر لڑنے کے لیے گیا۔ جانے مانے سینک اتہاس کار اور یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوشن کے سچیو رانا چھینا کہتے ہیں کہ اس بھرتی میں دکھن اور پوروی بھارت سے بہت کم لوگوں کو لیا گیا۔
उस जमाने में आपको अगर याद होगा तो एक अंग्रेजों की मार्शल रेसेस थ्योरी थी। उनकी सोच ऐसी थी कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि सिपाही बनने के काबिल हैं, उन्हीं को वो जो अपना फौज में भर्ती करते थे। लेकिन इनके साथ साथ इस महायुद्ध के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडियन मिलिट्री लेबर कोर भी भर्ती हुई। ये लोग नागालैंड से, मणिपुर से, भारत के दूर हिस्सों से आकर वो पहली बारी न कि उन्होंने भारत के बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहरों को देखा, लेकिन यूरोप और इजिप्ट और पूरी दुनिया में जाके उन्होंने एक बहुत ही नया रुख दुनिया का देखा और उसका उनके ऊपर काफी असर पड़ा था। लेबर कोर में आपके बल्कि 10 जेल लेबर कोर भी थे, जिसमें से जेल के कैदियों को उन्होंने भर्ती किया। उन्होंने कहा अगर आप लेबर यूनिट्स के अंदर आप आते हैं तो आपके जेल का समय है उसको भी कम किया जाएगा वगैरह वगैरह। और हर एक रेजिमेंट के साथ जैसे धोबी हुए, खानसामा, बेलदार, बड़ी तादाद में इन तरह के लोग भी शामिल थे।
ये ऐसे लोग थे जिन्हें इस स्तर की लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। ट्रेंचेस की लड़ाई, कीचड़ों की लड़ाई, टैंक, मशीन गन और बेइंतहा ठंड, ये सब उनके लिए बेहद नया अनुभव था। अंग्रेजी पत्रिका वीक की संवाददाता मंदिरा नैयर ने इस विषय पर खासा शोध किया है।
ये जो इंडियन सोल्जर्स हमारे थे, उन्होंने कभी एक मैकेनाइज्ड और इतनी वेल इक्विप्ड आर्मी से कभी फाइट नहीं की थी। पहली बार जब वो गए थे तो उनको तकरीबन 3-4 दिन दिए थे ये नया राइफल यूज टू होने में। और उन्होंने कभी ट्रेंच वॉरफेयर नहीं की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार गैस का उपयोग हुआ था, जर्मन्स ने किया था ईपर में। गैस मास्क हमारे पास नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि एक कपड़े में यूरिन डालकर अगर आपने नोज के पास रखें तो उससे आप बच जाएंगे। ऑफ कोर्स नहीं बचे। पहली बार इतने इंडियंस बाहर गए थे, पहली बार उन्होंने जहाज देखा था, पहली बार उन्होंने रेफ्रिजरेटेड फूड देखा था, पहली बार उन्होंने रिस्ट वॉचेस देखी थी, पहली बार उन्होंने विदेशी औरतें देखी थी। एक स्कैंडल भी था जिसमें एक सिपाही ने एक फ्रेंच वुमन से शादी की थी और उन्होंने अपने घर वालों को लिखा था कि किंग जॉर्ज ने उसको ऑर्डर किया था कि शादी करें।
दिलचस्प बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध में पहले भारतीय की मौत न तो पश्चिमी मोर्चे पर हुई थी और न ही मेसोपोटामिया और अफ्रीका के बीहड़ रेगिस्तान में। भारतीय सैनिकों के युद्ध मोर्चे पर पहुंचने से बहुत पहले ही भारतीय जमीन पर ही कई लोगों ने जर्मनी के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 22 सितंबर 1914 को जर्मन युद्धपोत एसएमएस एम्डेन ने चुपके से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर मद्रास बंदरगाह से 2,500 गज दूर लंगर डाला। उस समय मित्र देशों की सेनाओं का कोई भी पोत मद्रास बंदरगाह की निगरानी नहीं कर रहा था। आर के लोशनर अपनी किताब द लास्ट जेंटलमैन ऑफ वॉर द रेडर एक्सप्लॉइट्स ऑफ द क्रूजर एम्डेन में लिखते हैं,
रात 9:20 पर पोत के कमांडेंट कार्ल मुलर ने अपने 9 सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया। एम्डेन से फायर किए गए गोलों ने बर्मा ऑयल कंपनी के टैंकरों में आग लगा दी। उनमें 5,000 टन केरोसिन का तेल भरा हुआ था। उनसे निकलने वाली आग की लपटों को रात में पूरे मद्रास में देखा जा सकता था। मुलर पूरे शहर में दहशत फैलाना चाहते थे। उनके पोत से निकले गोले मद्रास हाईकोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट और नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की इमारतों पर गिरे। बंदरगाह पर खड़ा एक व्यापारिक जहाज भी डुबो दिया गया। 5 नाविक मारे गए और 13 घायल हो गए। 30 मिनट तक चले इस हमले में एम्डेन ने 130 गोले दागे। जब तक ब्रिटिश सैनिक जवाबी कार्रवाई करते, एम्डेन ने मद्रास छोड़ दिया था। जर्मन पोत पर दागे गए 9 गोलों में से एक भी उसे नहीं लगा था। मद्रास पर हुए इस हमले का इतना जबरदस्त असर हुआ था कि तमिल शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ गया था, एम्डेन, जिसका अर्थ होता है हिम्मती व्यक्ति जिसका निशाना अचूक होता है।
अंग्रेज इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों को कैनन फोडर यानी तोपचारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कई जगह अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उन्हें कुल मिलाकर 9,200 वीरता पदक मिले, जिनमें 11 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस भी शामिल थे।
खुदादाद खान बेल्जियम में होलबीक के पास एक मशीन गन डिटैचमेंट के अंदर थे और वहाँ से जब जर्मनी का एडवांस हो रहा था, ये डिटैचमेंट जो 129th बलूच रेजिमेंट की थी डटी रही और एक एक करके वो सब सिपाही मरते रहे। आखिर में ये बचे रहे और ये भी जब बिल्कुल घायल होके गिर पड़े और जब वहाँ से जर्मन आए, उन्होंने देखा शायद ये मर गए हैं और वो आगे निकल गए, लेकिन इनके उस एक्शन से वो जर्मनी का जो एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे एडवांस रोक दिया गया, उससे वो पूरी फ्रंट का उस हिस्सा उन्होंने बचा लिया।
इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों के खिलाफ जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, जो उनके लिए बिल्कुल नया और कटु अनुभव था। मंदिरा नैयर बताती है,
पहली बार जब गैस रिलीज हुई थी, कहते हैं कि एक इंडियन सोल्जर एक चिट्ठी लिखता है वापस, कहता है कि बिल्कुल हेल था, मतलब जहन्नुम था, और बिल्कुल था, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। तो जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जब लोगों को ऐसे गिर जाते थे कि कुछ समझ नहीं आया था, बिल्कुल वैसे ही हुआ होगा। तो कहते हैं कि पूरा फील्ड बस मरे हुए लोगों में, जैसे मक्खियां मरती है ना, वैसे ही जस्ट गिर गए लोग। और मीर मस्त ने, बाकी सब बेहोश थे, फिर भी उसने 8 आदमी को तब अपने पीठ में कैरी करके वापस अपने साइड लाया था।
घायल भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन में ब्राइटन में एक राजमहल में रखा गया था। ब्रिटेन के महाराजा ने कई साल पहले इस महल को ब्राइटन कॉरपोरेशन को बेच दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने इन अफवाहों को बढ़ावा दिया कि राजा ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए अपना राजमहल खाली कर दिया है।
ब्राइटन में सिर्फ 9 किचन थे, हर मजहब के लिए एक डिफरेंट किचन, 4 लैंग्वेजेस में हर साइन थी, मंदिर था, एक गुरुद्वारा था, मस्जिद था, उनको काफी चीजें मिलती थी। बाकी फिर कहते हैं कि इनकरेज नहीं किया जाता था कि औरतों को, मतलब ब्रिटिश औरतों को नर्सेस बनने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स एक रिस्ट्रिक्शन थी। तो ब्रिटिश एम्पायर को अगर प्रोपेगेंडा करना था और बताना था कि देखिए हम आपकी कितनी देखभाल कर रहे हैं, आप हमारे लिए कितने अजीज हैं, ब्राइटन था वो जगह। और अपेरेंटली हमारे पंजाबी सोल्जर्स काफ़ी रोमांटिक भी थे और सेंसर बोर्ड ने नोटिस किया है कि उनको काफ़ी लव लेटर्स मिलते थे।
The long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1s. Bless all the corporals and their thinking sons. 'Cause we're saying goodbye.
पहले विश्व युद्ध में 10,00,000 से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग मोर्चों पर ब्रिटेन के लिए लड़ाई लड़ी थी। भारत भेजे गए उनके पत्रों को बहुत कड़ाई से सेंसर किया जाता था। अवांछित हिस्सों पर गहरी काली स्याही पोत दी जाती थी ताकि उन्हें पढ़ा ही न जा सके। भारत में बीबीसी के पूर्व ब्यूरो प्रमुख मार्क टेली ऐसा करने की दूसरी वजह बताते हैं।
अंग्रेज का सरकार निर्धारता था कि अगर घर से खराब खबर मिलता है या कुछ खबर जो जवान लोगों को जैसा निराशा में पड़ेगा, वो इसको रोकना चाहता हूँ, उनको इनका मोराल, इनको मनोबल जो है नीचे नहीं जाना चाहता था। जब जवान चिट्ठी भेजते थे घर को, अंग्रेजी सरकार जो भारत में था, जो इंडियन सरकार था, ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट, वो नहीं चाहता था कि निराशा फैलेगा अपने जैसे पंजाब में और हरियाणा में जहाँ ज्यादातर जवान लोग रहते थे। क्योंकि एक अजीब बात है कि जवान लोग इंग्लैंड के लिए, सम्राट के लिए जंग लड़ते थे, लेकिन घर में एक बहुत तेज आजादी आंदोलन था।
इन पत्रों को पढ़ने से जो पहली चीज जहन में आती है वो है विषम परिस्थितियां और चारों तरफ हो रही बर्बादी का सजीव चित्रण। राइफलमैन अमर सिंह रावत ने फ्रांस के मोर्चे से अपने दोस्त को एक पत्र लिखा था।
धरती मरे हुए लोगों से भर गई है, कोई भी जगह खाली नहीं बची है। आगे बढ़ने के लिए लाशों के ऊपर से होकर जाना होता है, यहाँ तक कि उनके ऊपर सोना भी होता है, क्योंकि कोई खाली जगह बची ही नहीं है।
कई साल विदेश में लड़ने के बाद भारतीय सैनिक वहाँ से कई नई नई चीजें सीख कर आए। चाय पीने का चलन, फुटबॉल का खेल और कलाई घड़ी पहनने का रिवाज भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। इसके अलावा उनके विदेश प्रवास ने यहाँ के सामाजिक जीवन में भी कई बदलाव किए। केसी यादव हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी के निदेशक हैं।
हमारे यहाँ तो न राम मोहन राय थे, न हमारे यहाँ केशव चंद्र सेन थे, न कोई यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ तो प्राइमरी स्कूल थे, इन्होंने आकर के स्कूल बनवाए, गुरुकुल खुलवाए, एजुकेशन फैलाई और पैसा लेकर के आए। उस समय कैश का बड़ा भारी जो अभाव था यहाँ पर नहीं मिलता था। किसान थे, ज्वाइंट फैमिलीज थी, तो इनके तीन चार चार एक एक फैमिली से भर्ती हो गई तो 11-12 रुपए और कुछ भत्ता वत्ता मिला करके काफी अच्छी खासी रकम हो जाती थी। तो उससे जमीनें भी खरीद दी, कर्जा था वो भी उतारा, एक खुशहाली आई। उसके बाद में खान पान में बदलाव हुआ, कपड़े पहनने में बदलाव आ गया, इवन हरियाणा में वोकैबुलरी चेंज हो गई। जैसे कि आप हमारे यहाँ नेता हरे को तू कहते थे, फौज में गए तो अफसर को आप कहना पड़ा। जी का हम बहुत कम प्रयोग करते थे, अगर जी का प्रयोग करना पड़ता तो रे कहते थे, अरे किस जारा से, तो फिर बाद में कहने लगे किस जारा सो जी या कुछ इस तरह की जी लगाने लगे अगर बुजुर्ग है तो। कई दफा तो फ्रांस में जो रहे तो वो तो फ्रेंच की वोकैबुलरी भी उनकी थोड़ी थोड़ी हो गई थी।
इतनी कुर्बानियों के बावजूद इन सैनिकों का इतिहास के पन्नों में मामूली जिक्र ही हुआ है। 6 लंबे सालों तक उन्होंने अंग्रेजों के लिए अपना तन मन धन सब न्योछावर कर दिया, लेकिन न तो उन्हें इतिहास में जगह मिली और न ही भारतीय लोगों के दिलों में।
उस समय हमारी कोई एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी। अगर हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती तो उनको जो मान मिलना चाहिए था उनकी बहादुरी का, उनके सैक्रिफाइस का, वो जरूर मिलता। लेकिन क्योंकि हम एक गुलाम देश थे, हालांकि हमारे राजनीतिक जो नेता उस समय के थे उन्होंने ये सिपाहियों के बलिदान को एक मोहरा जरूर बनाया कि हाँ हम आपका साथ देंगे, आप हमको राजनीतिक आज़ादी दें, लेकिन क्योंकि अंग्रेज उस बात से मुकर गया और हमको वो आज़ादी नहीं मिली, उन सिपाहियों का जो कुर्बानी थी वो व्यर्थ गई। अगर वो हमको मिल जाती पॉलिटिकल फ्रीडम तो ये लोग हीरोज होते, उनको हम आज याद करते, लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ तो वो ना घर के ना घाट के बीच में ही दबके थे।
लाशों के बाद लाशा जहरा के घर का आया, तन्हा तुझे यहाँ पर मैं कैसे छोड़ जाऊं, कितनी तपिश है बेटा साया तेरा बना।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आपको रेहान फजल की विवेचना कैसी लगी जरूर लिखिएगा हमें। और अब सुनते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। अब से कुछ ही देर में वेस्ट इंडीज में शुरुआत होगी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की, और जहां एक तरफ अब से कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होगा मेजबान वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच, वहीं दूसरी तरफ मुकाबला होगा भारत का न्यूजीलैंड से। भारतीय क्रिकेटर्स से आप अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली का।
भारतीय टीम तो बहुत पहले से बहुत इम्प्रूव्ड टीम है। न्यूजीलैंड के साथ जो पहला मैच होगा आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जाने माने, पर भारत के जो तिकड़ी है मिथाली राज, हरमनप्रीत, प्रीति मंधाना, तो ये इन पे आप बहुत उम्मीद रख सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस यूज करके ये भारतीय टीम को आगे ले जाएं। पर आसान नहीं होगा, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, उस दिन आपको सब कुछ हर डिपार्टमेंट में क्लिक होना पड़ता है, तो ये भारत को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ। वहीं मेंस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो T20 मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज और भारत के बीच रविवार को।
कार्यक्रम खत्म होने के है, लेकिन उसके पहले सिंधु वासनी मौजूद है स्टूडियो में फिर से समाचार के साथ।
बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान में शांति और इलाके के भविष्य को लेकर रूस में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहली बार अफगानिस्तान और तालिबान शामिल हो रहे हैं। भारत भी इस सम्मेलन का हिस्सा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा है कि हाल में रिटायर हुए सेना के एक कर्नल पर शक है कि वो दशकों से रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। इस मामले में रूसी दूतावास के प्रमुख को तलब किया गया है। 80 साल पहले नाजी जर्मनी के क्रिस्टलनाख्त में यहूदियों की हत्या के बाद समुदाय के खिलाफ अत्याचार में तेजी आई थी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के मुताबिक 80 साल पहले यहाँ यहूदियों के खिलाफ बर्बरता के बावजूद अब भी जर्मनी में यहूदी विरोध की भावना व्यापक है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस का कहना है कि वो मेलबर्न में चाकू से हुए हमले को एक आतंकी घटना की तरह देख रही है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, पुलिस ने हमलावर पर गोली चलाई और बाद में उसकी मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
तकनीकी पक्ष संभाला था रवि शंकर कुमार ने। फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।